कृष्णा सोबती का स्त्रीत्ववादी परिप्रेक्ष्य पृष्ठ संख्या 206 इनवर्टेड कॉमा ओपन। वह पुरुष के भीतर दया या हिंसा पैदा करती होती तो वह यहाँ वहाँ मिल जाने वाली हर वह औरत होती जो पहले अपनी दया से पुरुष की हिंसा पकाती और फिर पुरुष की हिंसा से अपनी दयनीय स्थिति मजबूत करती। इनवर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ सोबती एक सोहबत, लेखिका कृष्णा सोबती, पृष्ठ संख्या 391। पैराचेंज। कृष्णा सोबती हिंदी की एक ऐसी सशक्त नारीवादी लेखिका हैं, जिन्होंने अपने लेखन में स्त्री की बदलती हुई स्थिति, उसकी यातनाओं, संघर्षों को स्त्रीत्ववादी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। स्त्रीत्ववादी परिप्रेक्ष्य के बिना कोई भी लेखिका अथवा लेखक स्त्री संसार की यातनामयी दुनिया, उसके दुखों को नहीं पहचान सकती। वैसे तो औरतों के बारे में स्त्रियों पुरुषों दोनों ने ही बहुत स्याही उड़ेली है, लेकिन उसमें कितना ऐसा लेखन है जो पूरी प्रामाणिकता, संवेदनशीलता तथा साहस के साथ उनके एकांत संघर्ष और यातनाओं, अस्मिताओं को पूरे यथार्थ में उद्घाटित कर सका हो। स्त्री के जीवन के बारे में क्या प्रत्येक लेखिका पूरी संजीदगी, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता के साथ लिख सकती हैं? हिंदी का ऐसा बहुत सारा स्वयं स्त्रियों द्वारा लिखा गया स्त्री लेखन है, जिसमें स्त्री दृष्टि, स्त्रीत्ववादी परिप्रेक्ष्य का ही अभाव रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? यह कोई जरूरी नहीं है कि एक स्त्री लेखिका के पास स्त्री दृष्टि ही हो, क्योंकि वह बहुत सी स्त्रियां भी लेखन में स्त्री दृष्टि को नहीं अपनाती हैं। यही स्त्री लेखन के मूल अंतर विरोध रहे हैं कि वे परंपरागत ढंग से ही स्त्री की स्थिति और भूमिका को प्रस्तुत कर सकी हैं। स्त्रीत्ववादी परिप्रेक्ष्य के अभाव में न तो स्त्री की स्थिति और भूमिका पर लिखा जा सकता है और न पितृसत्तात्मक समाज के अंतर विरोधों को पहचाना ही जा सकता है। आज तक का स्त्री लेखन पुलिंगी विमर्श के चौखटों में ही स्त्री संसार को देखता लिखता आया है। पैराचेंज। कृष्णा सोबती के लेखन में स्त्री की एक अलग ही छवि उभर कर सामने आई है, जो आज तक हाशिए पर ही रही है। यही कारण है कि उनके स्त्री लेखन के प्रति पुरुषों और स्त्रियों की तीखी अस्वीकृति मूल्य प्रतिक्रियाएं हैं, जिस प्रकार की तस्लीमा नसरीन के लेखन के प्रति हैं। इसका मुख्य कारण है कि पितृक वर्चस्व को आत्मसात करना, पुरुष दृष्टि से ही पृष्ठ संख्या 207, स्त्री के बारे में सोचना लिखना, डार से बिछुरी, मित्रों मरजानी, ए लड़की, सूरजमुखी अंधेरे के कृतियों में उनकी नारीवादी चेतना प्रखर रूप में उभर कर सामने आई है। 50, 60, 70 के दौरान जो स्त्री लेखन हुआ, उसने स्त्री चेतना के विकास में कोई विशेष महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई। कृष्णा सोबती के उपन्यासों में औरत कतरा कतरा जिंदगी जीती, पिसती, अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करती है। आज तक स्त्री के साथ समाज ने मानवीय ढंग से व्यवहार नहीं किया और न ही उसे पूर्ण मनुष्य के रूप में स्वीकृति ही दी है, इसीलिए उसके साथ अमानवीय व्यवहार होता रहा है। स्त्री के प्रति इसी तरह के हिंसक, अमानवीय, बर्बरतापूर्ण व्यवहार को कृष्णा सोबती ने अपने लेखन में दिखाया है तथा इसके लिए पितृक सत्ता को दोषी ठहराया है, जो उसके प्रति हिंसक दृष्टिकोण रखता आया है। पैराचेंज। कृष्णा सोबती ने हिंदी में जब स्त्रीत्ववादी परिप्रेक्ष्य से स्त्री के पक्ष में जोरदार ढंग से लिखा तथा पितृसत्तात्मक समाज की तीखी आलोचना की, तो तमाम पितृसत्तात्मक सामंतीय शक्तियां उनके लेखन के खिलाफ खड़ी हो गईं। उनकी रचनाओं यारों के यार, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, ए लड़की, दिलो दानिश के ने अनेकों संस्कारशील पितृसत्तात्मक समीक्षकों, पाठकों और उनकी समर्थक लेखिकाओं को आघात पहुंचाया कि यह लेखिका स्त्री की क्या छवियां प्रस्तुत कर रही है। उनके संस्कारशील पितृसत्तात्मक मन को गहरा सदमा पहुंचा कि स्त्रियां यह क्या बकवास लिखने लगी हैं। गाली गलौज और यौनाचार में इतनी स्वतंत्रता। पैराचेंज, कृष्णा सोबती एक विवादास्पद लेखिका इसलिए भी बना दी गई क्योंकि उनकी स्त्रियां पितृसत्तात्मक नैतिकता यौनाचरण का अनुकरण नहीं करती, बल्कि अपनी कामेक्षाओं की पूर्ति हेतु उस पितृसत्तात्मक अनुशासन को तोड़ती नजर आती हैं। यही कारण है कि हिंदी के अत्यधिक संस्कारशील समीक्षकों पाठकों को उनकी कृतियां बेहद फूहड़, अमर्यादित एवं अश्लील प्रतीत होती है। वास्तविकता यह है कि उनकी कृतियां अमर्यादित, अनैतिक एवं अश्लील हैं, या हमारे सोचने विचारने परखने के प्रतिमान ही पितृक परिप्रेक्ष्य वाले हैं। सवाल यह नहीं है कि कृष्णा सोबती की स्त्रियां अमर्यादित यौनाचार में इतनी स्वतंत्र हैं, अपितु वे सदियों से प्रचलित उस पैतृक नैतिकता, मर्यादा, संस्कारहीनता के उन खांचों को ध्वस्त करती हैं, जिन पर प्रश्न चिन्ह लगाना कोई सामान्य बात नहीं है। सोबती ने उन पितृक यौनाचरणों के प्रतिमानों को भी ध्वस्त कर दिया जो स्त्री की अस्मिताओं को रौंदते थे, उसकी यौन स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते थे। क्या स्त्री की कोई यौन इच्छा नहीं होती, उसका पति चाहे नपुंसक ही क्यों ना हो। ब्रैकेट में मित्रों मरजानी, कृष्णा सोबती ने मित्रों के माध्यम से सदियों से उत्पीड़ित स्त्री के मनोविज्ञान को प्रस्तुत किया है। पृष्ठ संख्या 208 कि वह कैसे नपुंसक व्यक्ति के साथ अपनी यौन इच्छाओं को होम करती है, लेकिन क्यों, यही तीखा प्रश्न मित्रों मरजानी का केंद्रीय मुद्दा है, जिसके प्रति साहित्य का समाज भी उतना ही असंवेदनशील है जितना हमारा निरक्षर सामंतीय समाज। लेखक का लेखन तभी गंभीर होता है जब वह समाज की एक एक परत को उधेड़ने का काम करता है, जो समाज की बनी बनाई मानसिकता को तोड़ता है, जो हमें यथास्थितिवाद से बाहर निकालता है। सोबती ने मित्रों मरजानी, हम हशमत, ए लड़की, जिंदगी नामा, यारों के यार रचनाओं से अपने स्त्रीत्ववादी परिप्रेक्ष्य को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि स्त्री के लिए ऐसा लिखना कितना चुनौतीपूर्ण काम है। वह औरत की जो स्थिति प्रस्तुत करना चाहती है, उसके लिए उनके मन को कोई द्विधा, आशंका, संशय, विरोधाभास नहीं है। उन्होंने जो कहना चाहा है कह दिया है, बिना किसी रोक टोक के, पूरे नैतिक साहस एवं संवेदनशीलता के साथ। सवाल यह है कि स्त्री लेखिका जिस सच्चाई को सामने ला रही है, उसे स्वीकारने का नैतिक साहस हम में क्यों नहीं है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि आज तक सच्चाई के मापदंड भी एक पक्षीय, एकांगी और लिंग भेदक ही रहे हैं। वह उस सच्चाई को व्यक्त कर रही है जिसे लिंग भेद के कारण दुराचारिता कहा जाता रहा है। इसीलिए सोबती के लेखन से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज आज तक बनी हुई हैं। इस प्रकार की कंट्रोवर्सीज का होना यदि सिद्ध करता है कि 21वीं सदी के इस उत्तर आधुनिक साहित्य के समाज में भी अभी तक 16वीं सदी की सामंतीय मानसिकता की मजबूत परतें कायम है, क्या ऐसी कंट्रोवर्सीज का होना बेहद पिछड़े हुए, संस्कृतिहीन, संवेदनहीन, स्त्री विरोधी समाज का परिणाम नहीं है। 70 की उम्र में भी उनमें जो अद्भुत पोटेंशियल्स है, रचनात्मक ऊर्जा है, वह किसी से कम नहीं कही जा सकती। पैराचीन, सोबती के स्त्री चरित्र उन तमाम खोखली पैतृक लक्ष्मण रेखाओं को तोड़े हैं जिन्होंने सदियों से स्त्री को यौनाचरण, सामाजिक आचरण, नैतिक आचरण की पितृक मर्यादाओं में बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। इन्हीं लक्ष्मण रेखाओं को तोड़ने की वजह से उन पर आरोप लगे हैं, लेकिन स्त्री विमर्श की दृष्टि से तो वे आरोप निराधार, लिंग भेदक हैं। कृष्णा सोबती ने इस अंतर विरोध को पहचाना है कि कैसे स्त्री लेखन अपने अंतर विरोधों, परिप्रेक्ष्यहीनता के कारण कमजोर, प्रभावहीन रहा है, और किस प्रकार के लेखन न स्त्री समाज के अधिकारों की चेतना विकसित की जा सकती है, किस प्रकार का लेखन स्त्री समाज को चेतना, फीडबैक, दिशा, जागरूकता प्रदान कर सकता है, और किस प्रकार का लेखन उन्हें यथास्थितिवादी बना सकता है। कृष्णा सोबती का लेखन स्त्री की यथास्थितिवाद के खिलाफ अपनी मानवीय स्त्रीत्ववादी भूमिका तो निभाता ही है। पृष्ठ संख्या 209। वह स्त्री को यथास्थितिवाद से बाहर निकालने वाला, उसकी मुक्ति की तलाश करने वाला, उनमें साहस और निर्भीकता पैदा करने वाला, उनकी मुक्ति की कामना करने वाला स्त्रीत्ववादी लेखन है। उसमें स्त्री की पारंपरिक छवि नहीं गढ़ी गई, अपितु उसे नियतिवाद यथास्थितिवाद से बाहर निकालने की भी दृष्टि प्रदान की गई है। इसी अर्थ में स्त्रीवादी लेखन को पढ़ा और समझा जाना जरूरी है कि स्त्री लेखन स्त्री समाज या पूरे समाज जिसमें पितृसत्ता भी शामिल है की चेतना को कैसे बदल रहा है, वह फीडबैक का काम कर भी रहा है या नहीं। कृष्णा सोबती का स्त्रीत्ववादी विमर्श स्त्री पाठ के संदर्भ में ही पढ़ा और समझा जा सकता है। पैराचेंज कृष्णा सोबती के लेखन में पितृसत्तात्मक समाज के अंतर्विरोधों विरोधाभासों की जो इतनी तीखी समझ है, वही उन्हें नारीवादी लेखिका के रूप में एक अलग पहचान बनाती है। सोबती के लेखन में औरत के निर्मम शोषण उत्पीड़न को उकारा गया है कि कैसे स्त्री के लिए परिवार एक खुली दास्ता है, जहां वह नियमों कानूनों सिद्धांतों रीति रिवाजों परंपराओं के नाम पर पिसती है। वहां पितृसत्तात्मक समाज का कड़ा अनुशासन है, कठोर नियम बंधन है जिसमें वह बंधी हुई है, जिन्हें वह नियम कायदों रीति रिवाजों के नाम पर भोग रही है। रीति रिवाजों के नाम पर स्त्री का जघन्य शोषण, परिवार स्त्री को कैसे अनुकूलित अनुशासित नियंत्रित करता है, इसकी समझ पितृसत्तात्मक समाज के अंतर विरोधों को जाने बिना नहीं हो सकती। परिवार की मान्यताएं धारणाएं नियम इतने कड़े हैं कि उन्हें तोड़ पाना, उसके प्रति अस्वीकृति रखना उसके लिए संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में वह कतरा कतरा टुकड़ा टुकड़ा जीवन जीती मरती है। सोबती के लेखन में स्त्री की इस स्थिति का पूरे यथार्थ के साथ चित्रण हुआ है। औरत का दमन किन किन धरातलों पर कैसे कैसे हो रहा है, वह कैसे पितृसत्तात्मक मूल्यों के नाम पर टुकड़ा टुकड़ा अस्तित्वहीन जीवन जीने को अभिशप्त है, इन सभी स्थितियों को सोबती जी ने अपनी कृतियों में प्रस्तुत किया है। पैराग्राफ चेंज स्त्रीत्ववादी परिप्रेक्ष्य के कारण ही कृष्णा सोबती पितृसत्तात्मक समाज की इतनी कटु गंभीर तीखी आलोचना कर सकी है कि किस प्रकार पैतृक मूल्य स्त्री को अन्य उपेक्षिता बनाती है, उसका जबरदस्त शोषण परंपराओं रीति रिवाजों मूल्यों संस्कारों के नाम पर ही हो रहा है। वह पिस रही है, उसका स्वत्व आवाज अस्मिता छीन ली गई है, वह स्वत्वहीन वाणीहीन प्रतिक्रियाहीन अस्मिताहीन है। वह इन स्थितियों में कैसे जी रही है, इन स्थितियों को कैसे झेल रही है, अपनी मुक्ति के लिए कैसे तड़प बिलख संघर्ष कर रही है और पितृक समाज उसके संघर्ष को कैसे रौंदता है, इन सब का चित्रण पृष्ठ संख्या 210 उनके स्त्री लेखन में किसी न किसी रूप में हुआ ही है। मित्रों मरजानी भी कृष्णा सोबती का एक ऐसा ही उपन्यास है जिसमें उनका नारीवादी दृष्टिकोण खुलकर सामने आया है। मित्रों एक ऐसी ही स्त्री है जो अपने भीतर की ज्वाला यौनिकताओं को प्रकट करती है। वह अपनी देहगत समस्याओं पर विचार करती है जिसे आज तक शायद ही किसी ने किया हो। जब परिवार में उसके मातृत्व पर प्रश्न उठाया जाता है तो वह खुले शब्दों में अपने पति की यौन संबंधी कमजोरी नपुंसकता की ओर संकेत करती है कि यदि उसमें ऊर्जा है तो वह 100-100 कौरवों को जन्म दे सकती है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन मेरा बस चले तो गिनकर 100 कौरव जन डालूं, पर अम्मा अपने लाडले बेटे का भी तो अड़तोड़ जुटाइए, निगोड़े उस पत्थर के बूत में भी कोई हरकत तो हो, धनवंती के बदन पर काटे उग आए, छी छी बहू ऐसे बोल कुबोल नहीं उच्चारे जाते। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ सोबती एक सोहबत लेखिका कृष्णा सोबती मित्रों मरजानी पृष्ठ संख्या 65। क्या स्त्री की कोई औनेक्षाएं नहीं होती? क्या वह अपनी इच्छाओं का गला घोटकर परिवार के ताने सुनती रहे? उसकी कोख आज यदि हरी नहीं हुई तो इसमें उसका क्या दोष है? पहली बार स्त्री अपने अनुभवों के साथ खुलकर सामने आती है, वह पुरुष की नपुंसकता की ओर संकेत करती है। ऐसी स्त्रियों को समाज अक्सर वैश्या चरित्रहीन समझता है, उनके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या स्त्री की कोई इच्छाएं सुख पाने की कामनाएं नहीं होती? क्या यौन सुख पाने की कामना का अधिकार केवल पुरुषों के पास ही है? मित्रों, मरजानी उपन्यास में सोबती जी ने ऐसे ही प्रश्न उठाए हैं। इस उपन्यास को पढ़कर स्त्रियों की प्रतिक्रियाएं भिन्न हैं और पुरुषों की भिन्न। पुरुष आमतौर पर प्रश्न करते हैं कि सोबती ने यह क्या लिख दिया, क्या यही कुछ स्त्री लेखन होता है? इसके स्त्री चरित्र कितने यौन वासनाओं कुंठाओं के शिकार हैं? सामंतवाद के लिए सोबती का लेखन समस्याग्रस्त इसलिए है क्योंकि वह पितृक सामंतीवाद मानसिकता को ही समस्याग्रस्त बनाता है, उसे विखंडित करता है। इसीलिए पितृसत्तात्मक संस्कृति चिंतित भी है और आश्चर्यचकित भी कि सोबती स्त्री की क्या और कैसी छवियां गढ़ती रहती हैं। पैराचेंज, मित्रों जब अपने पति की कमजोरी को खुले शब्दों में कहती है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन इसने गोड़े में भी कहीं हरकत हो तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, उसके इस कटु वाक्य को सुनकर वह औरत कहती है, छी छी, स्त्रियां कभी ऐसे बोल कुबोल नहीं उच्चारती। क्यों नहीं उच्चार सकती? पीड़ित स्त्रियां सच बोले तो वे कुबोल वाक्य, यह है पैतृक नैतिकता। इसीलिए मित्रों के बोल कुबोल में बदल जाते हैं। इसीलिए मित्रों का चरित्र सामंतवादी पितृक सत्ता के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है, असभ्य और अश्लील सा। वह इसलिए क्योंकि वह उस असभ्य समाज की बखिया उधेड़ती है। वह एक सजग नारी की प्रतीक है जो शोषण अन्याय को चुपचाप सहन नहीं कर सकती। तभी तो वह कहती है इन्वर्टेड कॉमा ओपन ऐसे ही मर्द जने की हुक्म बंद लौंडी हूं ना, मिलाने को तो रातों मुझसे नजर न मिलाए, मैं उसके तहबंद के पल्लू खींचती रहूं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जब मित्रों की माँ सरदारी लाल से छेड़छाड़ करती है तो उसे लगता है कि वह उसकी सास न होकर कोई कारोबारन धंधे वाली व्यापारन हो। वह उसके साथ सट कर बैठती है। इतना ही नहीं, वही मित्रों पति को शराब के नशे में चित्त करके अपने दूसरे एक साथी के साथ अपनी कामाग्नि को तृप्त करने जाती है। उसका यहाँ तक कहना इन्वर्टेड कॉमा ओपन अम्मा अपने पहलवान बेटे को किसी वैद्य हकीम के पास ले जा, यह लीला उसके बस की नहीं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इन्वर्टेड कॉमा ओपन मारो, मार कर गाड़ दो मुझे, इस संताप से तो छुट्टी होगी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मित्रों ऐसे कथनों से उस घर की दहलीज में जबरदस्त उथल पुथल मचा देती है। पैराचेंज, सोबती जी ने मित्रों के बारे में जो टिप्पणी की है वह काफी गहरे यथार्थ बोध से परिपूर्ण है। इन्वर्टेड कॉमा पे मित्रों के प्राण में जितना खम था, उसकी टकराहट में जितना दम था, उतने गहरे अंकुश लेखक पे लगते चले गए हैं। किसी भी घर गृहस्थी के आंगन से कभी भी मित्रों की आदिम महक सूंघी जा सकती है। मित्रों अपने बूते पर घुटती है, लड़की है, मस्खरी करती है, टक्कर लेती है, सीना जोरी भी, और एक फुंकारती घड़ी में अपनी माँ की संज्ञा को अलग्नि पर टंगते देखा, स्वयं ही अपने फरफराते उफराते कपड़ों को सहेज समेत परले सिरे में अपने साथ आ लगती है, अपने को ढूंढ लेती है मित्रों की देह में दहकती आदिम अगन। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ वही पृष्ठ संख्या 388। स्वयं लेखिका सोबती का मित्रों की रचना प्रक्रिया के बारे में कथन है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन पुरानी नींवों सहतीरों को हिलाने वाला मित्रों का सा जलजला उठी आए तो आप ही बन जाती है मित्रों मर जानी की सी कहानी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पृष्ठ संख्या 388 वही। सही अर्थों में मित्रों के भीतर एक आदिम अगंस की दहकती महकती हुई गंध है जिसे पितृसत्तात्मक सामाजिक मूल्यों ने दबाया हुआ है। मित्रों, मरजानी का रूपक इन्हीं पितृसत्तात्मक सामाजिक मूल्यों को अभ्यस्त करता हुआ स्त्रीवादी विमर्श का एक नया पाठ प्रदान करता है। वह उन पुरानी नींवों, खोखले अनुशासन के चूल्हे हिला देने वाला साहसिक नारीवादी पाठ है। यही पितृक पाठकों के लिए सबसे बड़ी चिंता और समस्या है। डार से बिछड़ी उपन्यास में कृष्णा सोबती जी ने एक ऐसी लड़की का मार्मिक चित्रण किया है जो अर्ध परिवार में बेच दी जाती है, जहां वह द्रौपदी बना दी गई है, अर्थात उस वृद्ध महिला के चार पुत्रों की पत्नी। उसी में वह स्वयं को गहरे अंधेरे कुएं में लटकती हुई लज्ज के समान पाती है, जिसे बार बार उसमें से निकाला, उतारा, चढ़ाया जाता है। वह उसी नरक में चरखंडी पर झूलती हुई लज्ज के समान है, जिसे बार बार अंधेरे कुएं में ढकेला, निकाला जाता है और अंत में उसी में लटका दिया जाता है। पृष्ठ संख्या 212। डार से बिछड़ी कृति में वह स्त्री स्वयं को उस भयानक गहरे कुएं में लटकती लज्ज के समान पाती है, जिसका काम कभी बाहर आना है तो कभी भीतर नीचे जाना है। उपन्यास यहाँ आकर पाठकीय संवेदना को हिला एवं झकझोर देता है। उसके वाक्य दिल को दहला देने वाले हैं। वह छरखंडी पर चढ़ी हुई लज्ज है, लटकती झूलती हुई, कभी नीचे तो कभी ऊपर एवं कभी बीच में। उसका कोई घर नहीं, वह केवल एक देह है, खरीदने और बेचने की वस्तु की तरह अस्तित्वहीन, अस्मिताहीन औरत। पैराचेंज। निसंदेह उपन्यास के ऐसे अंश बेहद मर्मस्पर्शी, संवेदनशील हैं, जिनको स्त्रीत्ववादी परिप्रेक्ष्य स्त्री पाठ से ही पढ़ना संभव है। अब वह एक नए नाम से संबोधित है, उसका वास्तविक नाम भी छीन लिया गया है, वह अनाम है। अब उसे एक नया सांस्कृतिक अर्थों से भरा हुआ प्रतीकात्मक नाम दे दिया गया है, वह नाम है द्रौपदी। द्रौपदी सबसे खतरनाक लेकिन पितृसत्तात्मक समाज का दिया हुआ चिन्ह। वह अब एक ऐसी निर्मम स्थिति में है कि वह कई पतियों की अकेली पत्नी है, जिसने परिवार की सेवा भक्ति से पतियों की काम वासना को द्रौपदी बनकर निभाना है। पैराचेंज। संभव है कि ऐसे नाम पितृसत्तात्मक समाजों को तो बेधड़क नंगा तो करते ही हैं। कौन आज के इस युग में अपनी पुत्री स्त्री का नाम द्रौपदी रखना पसंद करेगा? द्रौपदी क्योंकि एक नाम ही नहीं है, वह सांस्कृतिक वर्चस्ववाद में एक पितृसत्तात्मक समाज का चिन्ह प्रतीक भी है, जिसे वहन कराने के लिए उस अनाम स्त्री को द्रौपदी की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया है। उसकी इच्छा के पूर्णतया खिलाफ, जहां वह अपने शरीर को कुएं में चरखंडी पर चढ़ी लज्ज के समान लटकती, झूलती, मरती हुई पाती है। बराजेंज, प्रश्न तो यह है कि वह द्रौपदी क्यों बनाई गई? द्रौपदी बनकर उसे क्या करना है? नामकरण कितना प्रतीकात्मक किया गया है उस स्त्री का? इस नामकरण में ही लेखिका ने सब कुछ कह दिया है, उसकी उत्पीड़ित स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया है। शेष अपनी स्थिति का बोध वह आत्मसंवाद यानी मोनोलॉग में ही कर रही है कि दादी की वाकवाणी सत्य होकर निकली कि एक बार का थिरका पांव जिंदगानी धूल में मिलाकर रख देगा। आज उसे लग रहा है कि वह जैसे जिंदगी डार से बिछुड़ गई है, डार से बिछुड़ कर जैसे पुनः डार ब्रैकेट में समाज से जुड़ना संभव नहीं होता, ठीक उसी प्रकार स्त्री की भी समाज में वही स्थिति है। समाज उसको सुरक्षा न देकर उसकी घनघोर उपेक्षा ही करता है, वह उसे सीता सावित्री न बनाकर द्रौपदी ही बना डालता है, उपेक्षिता, अन्य और एक वस्तु महज। इसीलिए सोबती जी ने उस स्त्री में डार से बिछड़ी का चिन्ह दिया है। फिर ऐसी स्त्रियों को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? पृष्ठ संख्या 213। वे स्वयं को डार से बिछड़ी हुई ही अनुभव करती हैं। पितृसत्तात्मक की यह एक सच्चाई है, जिसकी ओर संकेत लेखिका ने किया है। किस प्रकार दर दर भटकती, बेची और खरीदी जाती वह लड़की अंततो गत्वा द्रौपदी बना दी जाती है। यही आकर सोबती ने स्त्री समाज की ऐसी स्थिति को स्पष्ट किया है कि किस प्रकार स्त्री अभिशापों और संतापों को झेल रही है। वह बार बार अपने स्वयं को टटोलती है। समाज में एक छोटा सा टुकड़ा जमीन जहां वह खड़ी हो सके, अपने पांव के नीचे की धरती को अनुभव कर सके, वह डार से बिछड़ी हुई है। इसीलिए जो पत्ता यदि एक बार डाल से अलग हो जाए तो क्या वह उसी डाल की शाखा से मिल सकता है? प्रतीकात्मक स्तर पर वह अपने समाज से अलग थलग हो चुकी है। क्या समाज ऐसी स्त्रियों को स्वीकृति देता है? डार से बिछड़ी, मित्रों मर जानी या जिंदगी नामा उपन्यास में भी स्त्री चरित्र पुरुष के वर्चस्व और शोषण में गर्व महसूस करती है। इन्वर्टेड कमापन, लड़की मर्द का दबदबा रहना ही चाहिए, उसका स्थान नीचे नहीं ऊपर है। लड़की हर नर अपने को परम पुरुष समझता है, उसी की कृपा से अपने तपोबल को जगाता गर्माता है और नारी उसकी इष्ट है। पृथ्वी वह पराशक्ति बनी पुरुष के आगे पीछे व्याप्त हो जाती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यद्यपि आज यह कहना कि कृष्णा सोबती की स्त्रियां पुरुष के शोषण में आनंद लेती हैं, लगेगा कि यह कहानीकार के बारे में एक रिट्रोगेसिव उक्ति है, लेकिन नहीं। अगर ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि अंतर्निहित सच्चाई तो यही है। स्त्री मुक्ति की सारी वर्तमान स्थूल चर्चाओं, बासी खबरों, बंजर ललकारों से प्रमाणित न होते हुए भी भारतीय समाज के अंतरधारा का यह निपट सच आज भी उतना ही सच है जितना इसके खिलाफ दावे पेश किए जाते हैं। पैराचीन, वह पुरुष के भीतर दया या हिंसा भाव पर पैदा करती होती तो यहाँ वहाँ मिल जाने वाली हर औरत होती जो पहले अपनी दया से पुरुष की हिंसा पकाती और फिर पुरुष की हिंसा से अपनी दयनीय स्थिति मजबूत करती। स्त्री वह औरत नहीं, स्त्री बचपन के पारदर्शी कांच के टूटे जाने से घायल वह व्यक्ति है जो संबंधों की जमीन पर सुरक्षा के तंबू नहीं गाड़ सकती। संदर्भ ग्रंथ है वही पृष्ठ संख्या 391। वह कैसे अपनी देह से जुड़े सवालों के प्रति स्वतंत्र और संघर्षरत है, उसकी इस स्वतंत्रता को पुरुष समाज आपत्तिजनक समझता है क्योंकि नैतिकता मर्यादा के प्रतिमान पैतृक है। पैराचेंज, सोबती का कथन बिल्कुल सही है। रत्ती जैसी औरत अपने सर्दपन में सिर्फ जान पहचान के दावे कर सकती है, सेक्स के कुदरती बहाव से उदित सगे संबंध स्थापित नहीं करती। उसका सोचना, उसका अंतर्द्वंद संबंधों के लिए नहीं, संबंधों में भी नहीं, संबंधों की लीक के बाहर है। प्रेम जैसे रोमांटिक शेड का उसके निकट कोई उपयोग नहीं। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास हो या यारों के यार, मित्रों मर जानी, सभी में स्त्रियां संबंधों की परंपरित लीक को तोड़ती नजर आती हैं। संबंधों की पारंपरिक लीक को तोड़ना सोबती की स्त्रियां बखूबी जानती हैं। ऐसे जोखिमों को उठाना उनके स्त्री पात्रों की विशिष्ट पहचान है। वे उन सगे संबंधों को तोड़ती हैं। सोबती की यह कृतियां मानवीय मन के अंधेरों और सन्नाटों का दस्तावेज है जिसमें वह निरंतर स्वयं से लड़ती हैं। वह औरत के एकांत के अंतर्द्वंद को प्रस्तुत करती हैं। कृष्णा सोबती का स्त्री लेखन इसी प्रक्रिया में परंपरित स्त्री लेखन से भिन्न प्रतीत होता है क्योंकि वह स्त्री की नियति और स्थिति को अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करता है। आज तक औरत को उसके शरीर अंगों के बाहर उसकी आत्मा को पहचाना ही नहीं गया कि वह भी एक मनुष्य है। उसके भीतर भी कल्पनाओं के सपने, आकांक्षाएं, उमंगे, कामनाएं जन्म लेती हैं। वह भी एक आजाद पक्षी की तरह अपने पंखों को फैलाकर खुले गगन मंडल में उड़ना, चहकना चाहती है, उस अनंत दूरी को मापना चाहती है। कृष्णा सोबती के स्त्री पात्र छत बिछत हैं, अंधेरे के सूरजमुखी हैं, जो घने अंधेरों से लड़ते लड़ते लहू लुहान हो चुकी हैं। संबंधों की लीक को तोड़ती तोड़ती अपमानित हो रही है, लेकिन अपनी अस्मिता की खोज की तीव्र आकांक्षा तो उनमें है ही। वे अपने स्वत्व अस्मिता के प्रश्नों को लेकर जबरदस्त संघर्ष कर रही है। समाप्त।